अगला बाप जो उसमें गोबर से स्तंजा ना करने की अलग रिवायत भी है। बाप ला यस्तन जी बिरौसिन अन अब्दुल्लाह इब्ने उम मसूद रजी अल्लाह अन्हु काल, हज़रत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिलगाइता, यानी अल्लाह के नबी सल्लम एक दफ़ा ज़रूरत के लिए आए, फामरीनी फिर आपने मुझे हुक्म दिया, अन आतियहु कि मैं लाऊं उनके लिए, भी सलासत अहजारिन तीन पत्थर। ये देखिए यहाँ आप तीन पत्थर आपने खुद बोल दिए कि तीन पत्थर लेकर आओ, तो ये भी एक ट्रेनिंग थी उम्मत को बताना था कि अगर ज़रूरत पड़े ऐसे वक्तों में साफ़ करने की तो आप तीन दफ़ा टॉयलेट पेपर यूज़ कर लें या तीन पत्थर यूज़ कर लें। खैर कहते फवजत तो हजरई नहीं, मुझे दो पत्थर तो मिल गए, यानी तीन नहीं मिले सिर्फ दो मिले, फल तमस्तु सालिसा फलम अजिद हु, फिर मैंने तलाश किया लेकिन मुझे उसके बावजूद तीसरा पत्थर नहीं मिला, फ़ख़्ज़्तु रौसतन फिर मैंने पकड़ लिया गोबर का एक खुश्क टुकड़ा, फातैतुहू बिहा तो मैं उसको आपके पास ले आया, फ़ख़ज़ल हजरैनी फिर आपने दोनों पत्थर तो ले लिए, वल्कर रौसता और फेंक दिया गोबर को, वकाला और कहा हाज़ा ये रिक्सुन ये नापाक है। ये रिक्सुन लफ्ज़ को भी आप देखें, आपने शायद फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, कुरान में दो लफ्ज़ पढ़ते हैं हम, रिज रा जीम ज़ा और रिज्स रा जीम सीन, ये रिक्स तीनों एक ही वजन है, रिज्स और रिज्सुन ये तीनों है, यानी बर फरमाया कि ये पलीद है ये ना करो। कहते हैं कि वो गधे की गंदगी थी और अल्लाह के नबी ने उसको नजस करार दिया और फिर तीसरा पत्थर लिया। इससे एक बात ये भी पता चलती कि कम से कम तीन पत्थर इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब ये वन टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम तीन दफ़ा तहारत इस्तेमाल कीजिए, फिर जिस्म से गंदगी जो है वो इंसान के पाक होती है। आप सोचिए कि हमारे पास कितनी नेमतें, हमारे पास पानी भी है, हमारे पास टॉयलेट पेपर्स भी होते हैं और फिर मैचिंग भी होते हैं बाथरूमों के साथ, फिर उसको खुश करने के लिए टॉयलेट सीट भी होती है। हमसे ज़्यादा भी कोई बादशाह होगा बड़ा? पहले दौर के तो बादशाहों को भी शायद वो खूबियाँ नहीं हासिल थी, उनके पास भी वो नेमतें नहीं थी जो आज हमारे आम अदना लोगों के पास है, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी नाफरमानियों के बावजूद। तो आज से जब भी वॉशरूम में जाएँ इन चीज़ों को देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब क्या इनको फिर फेंकें, पूरा टॉयलेट भर दें इन्हीं के साथ? इनका एक्सेसिव यूज़ क्या ये नेमतों का ज़ियाँ होगा कि नेमतों की कदर होगी? ज़रूरत की चीज़ है ना। आप कहते क्या फ़र्क पड़ता है, एक पाउंड के आ जाते हैं चार या छः, एक पाउंड छोटा, एक पाउंड से कितनी ईंटें आ जाएं अगर आप किसी मस्जिद के लिए ख़रीद लें। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करें लेकिन ज़ाया ना करें। बाज़ दफ़ा मैंने लोगों को देखा वो एक दो शीट तो उतारते हैं, वो यूँ पकड़ के ना तो यूँ ढेर का ढेर, और आप सोचिए कि आप इतने गंदे हैं कि आपको इतना कागज़ यूज़ करना है। अब ये है तो बहुत पर्सनल सी बात है, मस्जिदों में जाके कभी देखा करें ढेर लगे होते हैं, वो बेचारों ने ले लेके भी इतने रखे होते हैं, फिर जितना ट्रैश बनता है वो किस चीज़ का बनता है? और सबसे बड़ी बात है अल्लाह सुब्हान तआला रिसोर्सेज को ज़ाया करने से मना करते हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल जो होता है वो इंसान को खैर देता है। तो यूज़ कीजिए, सब चीज़ें इस्तेमाल करें, बच्चों को शुरू से सिखाएं। अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं एक नैपकिन की ज़रूरत है तो एक लें, ऐसे ऐसे टू 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 करके लोग पकड़ते हैं। एक सिस्टर थी तो वो कहने लगी मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। मैंने कहा कैसे आप पे गया? कहती जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक टिश्यू नहीं लेती थी तो मेरा बच्चा तो पूरा टिश्यू का पेपर ही डब्बा ही खोल देता है, मैं देखती हूँ तो मैं उसको कुछ कह नहीं पाती, मुझे अपना याद आ जाता है कि मैं ऐसी थी। माएँ जब अल्लाह से डरने वाली होती हैं, जब माएँ अल्लाह की नेमतों की कदर करती हैं, तो फिर आप सोचिए एक दिन आप वॉशरूम में जाएँ टॉयलेट पेपर ना हो। आज तो मेरे अले लोग वॉशरूम से फारिग ही ना हो बाहर आ जाए कि टॉयलेट पेपर ही नहीं है। इतना भी ना अपने आप को मुख्ताज बना दें, कई ऑल्टरनेट्स होते हैं लेकिन ना हो तो फिर। और अच्छी माएँ जो होती है ना, अगर बच्चे मिसयूज़ करते हैं ना तो ना रखें, आप छुपा दें अगर घर में भी हैं, एक दें उनको कि बस एक इस्तेमाल करना है आपने पूरे हफ्ते का, एक करना है। आप कहेंगे क्या आप कंजूस बनाती रहती हैं, ये कोई बातें करने वाली, ये लाइफ स्टाइल होता है। हम जिस तरह नेमतों की कदर नहीं करते फिर इसी तरह हम वक्त की कदर नहीं करते, बोलने वाले लफ्ज़ों की कदर नहीं करते, दिल में आने वाले ख्यालात की कदर नहीं करते, तो केयरलेसनेस जो होती है ना वो हमारे किरदार का एक हिस्सा बन जाती है। तो जो बंदा सोच समझ के काम करेगा वो हर चीज़ के ऊपर नजर रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुम तो सलुन्ना यौम इजिन अनिन नहीं, तुमसे तो ज़रूर नेमतों के बारे में सवाल होगा। एक मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्मी की दोपहर और बहुत प्यास थी किसी जगह गए तो उन्होंने उनको दूध में पानी मिलाकर लस्सी बना के दे दी, जैसे कच्ची लस्सी आप कह लें, पीने लगे हैं अभी मुंह के पास ला रहे हैं तो छोड़ दिया। उसने कहा क्या हुआ आपको तो बहुत प्यास लगी थी? तो कहने लगे कि इस सोच ने मेरे हाथ से एक बर्तन पीछे कर दिया कि कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला से ये ना कह दे कि उमर तेरी सारी जिंदगी की नेकियों के बदले में मैंने उस गर्मी की दोपहर में तुझे वो ठंडा दूध पिला दिया था। تو جا آج میرے پاس تیرے لیے ان عملوں کی کوئی جزا نہیں ہے. کیا یہ رونت نہیں ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو اتنا ضائع کریں؟ ایک گھونٹ چکھتے ہیں پھینک دیتے ہیں, نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نے یہ پی تھی, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو اتنے مجبور ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز کے آگے ہار گئے. ہم نعمتوں کو جب اس طرح مس یوز کرتے ہیں نا, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آتا ہے. پھر اسی طرح اگلا باب دیکھیے, الوضو مرتن مرتن, وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا. اب یہ بھی ایک ایشو ہے جو آپ کے انشاءاللہ سامنے آئے گا کہ ہم وضو کرتے وقت کتنی دفعہ دھوئیں ہاتھوں کو یا باقی چیزوں کو. تو یہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے حدیث, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا. یہ مرتن کا لفظ کبھی پڑھا آپ نے پہلے؟ جی کہاں پڑھا؟ الطلاق مرتن, شاباش, تثنیہ ہے وہ مرتن کا ہی, تو ایک مرتبہ پھر دوسری بار. تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ دھونا. اب ساری حدیث سے پڑھ کے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ ہاتھ بھی ایک ہی دفعہ دھوئیں, منہ بھی ایک ہی دفعہ دھوئیں. اس حدیث سے اور ابن عباس راوی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دھویا. اچھا جی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آ گئی. اب اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں, الوضو مرتین مرتین, وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھونا. عن عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا, رسول اللہ نے وضو فرمایا, مرتین مرتین, دو دو بار دھویا, یعنی اعضاء کو دو دو بار دھویا. اب یہ جو صحابی ہیں یہ غیر معروف صحابی ہیں, عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری قبیلہ مازن سے تھے. باب الوضو ثلاثن ثلاثن, وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا. ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, دا بی انا, انہوں نے منگوایا, بی انائن برتن, ایک دفعہ اپنے پانی کا برتن منگایا, فافرغ علی یدیہ ثلاث مرار فغسلہما, اور اپنے ہاتھوں پر تین تین بار پانی ڈال کر دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الاناء, پھر داخل کیا اپنا دایاں ہاتھ برتن میں, فمد مدا, پھر کلی کی, یعنی ڈالا اور کلی کی, پھر واستنشق, پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا, واستنثر, اور اس کو صاف کیا یعنی جھاڑا. لکھ سکتے ہیں آپ ناک کو جھاڑنا. یہ جو اردو میں لفظ ہوتا ہے نا نثر, شاعری کے اپوزٹ جو بولتے ہیں, پروز جس کو بولتے ہیں, وہ بھی یہی لفظ ہے. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے کلام کو, استنثار بھی ہے. تو جب ناک کو جھاڑا جاتا ہے تو ناک کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ پھیل جاتی ہے, اس لیے اس کو واستنثر کہتے ہیں. ثم غسل وجهه, پھر دھویا اپنے چہرے کو, ثلاث مرات, تین مرتبہ, ویدیہ, اور اپنے ہاتھوں کو, الی المرفقین, کونیوں تک, ثلاثن, تین مرتبہ, ثم مسح براسه, پھر اپنے سر کا مسح کیا, ثم غسل رجلیہ ثلاث مرات الی الکعبین, پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں تین مرتبہ ٹخنوں تک, یہ جو اینکلز ہیں. ثم پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من توضا, جس نے وضو کیا, نحو, اسی طرح وضوئی, میرے وضو کے, حاضر, یہ, یعنی جس طرح میں نے یہ وضو کیا اس طرح اگر کوئی وضو کرے گا, ثم صلی رکعتین, پھر دو رکعت نماز ادا کرے گا, لا یحدث فیہما نفسہ, جس میں اپنے نفس سے باتیں نہ کریں, یعنی نماز پوری فوکسڈ ہو کے پڑھے, اس میں اللہ سے بات کر رہا ہے, خود کچھ نہیں کر رہا, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ گناہ جو کہ اس نے اس سے پہلے کیے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس میں ایک دو باتیں ہیں بہت ہی غور کی, اور وہ کیا ہے کہ پچھلی روایت میں ایک دفعہ, پھر دوسری میں دو دفعہ, یہاں تین بار. پہلے اس مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے, کم سے کم ایک دفعہ, یعنی فرض ایک دفعہ ہے دھونا, دو دفعہ کرنے کی رخصت ہے, اور تین دفعہ کرنا حد ہے. بات سمجھے؟ یا سنت ہے. ایک دفعہ اگر آپ جسم کے عضاء دھوتے ہیں وضو میں تو وضو ہو جاتا ہے. ہمارے کلچر میں آپ دیکھیے کہ تصور ہی نہیں ہے کہ تین دفعہ سے کم کریں. تین حد ہے, اس سے زیادہ کریں گے تو حدیث میں آتا ہے اس نے زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے, دو دفعہ کر لیں کوئی حرج نہیں. حالات اور وقت کے تقاضا ہوتا ہے, کبھی ایک دفعہ کرنے سے کفایت ہو جاتی ہے, کبھی دو سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں تینوں سنت ہے. اللہ کے نبی نے ایک بار بھی کیا, دو بار بھی کیا, تین بار بھی کیا. ٹھیک ہے, پانی کم ہے. اب آپ اکیلے وضو کر رہے ہیں, مجھے وہی ہتے کٹور یاد آ جاتا ہے, ہم نے پانی کے گلاس گلاس سے پینے والا पानी था उससे हमने 30-35 लोगों ने वजू किया था। तो अब वो सारे बंदों का अगर 3 दफ़ा ही मुंह धोए, और इतनी सर्दी में यक ठंडा पानी था वो तो 1 दफ़ा भी डालना मुश्किल था। तो हमने शुक्र किया कि हमें मसला पता है, हमने 1 दफ़ा बल्कि आपको पता है कि मुंह पे पानी पूरा ढालते हैं ना, हम तो अपना भी मुंह धो रहे होते हैं और सिंक का भी मुंह धो रहे होते हैं और सामने शीशे का भी मुंह धोते हैं ना, तो इतने मुंह धोने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ अगर अपने जैसे हाथ पानी में डाल के ना बस 1 दफ़ा पूरे मुंह को मेक श्योर कर लें कि खुश्क नहीं रहा, तो आपका वजू हो गया। यानी मुंह पे पानी गिराना मकसद नहीं है, हो तो बहा ले, मना नहीं है, लेकिन हदीस में आता है एक और जगह कि तुम दरिया के किनारे भी अगर वजू कर रहे हो तो भी वहां पानी हिसाब से इस्तेमाल करो। ठीक है, तो बात समझ आ गई। 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं कर सकते। अमूमन नबी सल्लम 3 ही दफ़ा करते थे, लेकिन उसके अलावा कभी वक्त ऐसा होता तो 1 या 2 बार भी कर लेते थे। दूसरी बात देखिए कि अल्लाह के नबी ने इधर जो दूसरे से मदद ली, फिर वही बात आ गई कि वजू करते हुए आपने हेल्प ली। और मजे की बात है कि जितनी हदीसें भी हम पढ़ रहे हैं ना मुख्तलिफ सहाबा से हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ एक ही सहाबी इस चीज़ का ख्याल रखते थे, बल्कि बाकी लोग भी रखते थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ इससे पता चली कि पानी टैब में नहीं आ रहा, बर्तन में रखा हुआ है। जैसे पहले दौर में लोग तसलों में पानी रख लेते थे, टब में होता था, तो फिर क्या किया जाएगा, हाथ पहले धो चुके हैं ना, तो फिर अपने हाथ को उसी बर्तन में डाल के दोबारा कर सकते हैं। वही तो वधू विधू और वजू वाली कहानी, वो बर्तन जिसमें हम वजू का पानी डालते हैं, तो ये भी जायज़ है। शर्त ये कि आप दाएं हाथ को पहले साफ कर चुके हैं तो वो उसी के अंदर बार बार डाल के दाखिल कर सकते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए कि और ये जो हदीस है ना उस्मान बिन अफान की, ये बहुत क्लियरली मसनून तरीके से वजू को धोया। ठीक है, हर चीज जिसको आप रिस्ट बोलते हैं, जहां अमूमन घड़ी पहनी जाती है, ये 3 दफा इसको अच्छी तरह से धो लिया, पानी में डाला। अब आप जरा इन अल्फाज पे नजर रखें तो कुछ लोगों को ये बात नहीं लगेगी, इसीलिए वजाहत करने से पहले आपकी तवज्जो चाह रही हूँ। लफ्ज क्या है, 3 दफा हाथ धो लिए, फिर दाएं हाथ को पानी में डाला, ठीक है, राइट हैंड, फिर उसमें पानी लिया, कुल्ली की और नाक में पानी डाला। ये क्या बात हुई, हम तो हमेशा ये करते रहे कि सीधे हाथ से कुल्ली करते हैं और उल्टे हाथ से नाक में डालते हैं। यह हदीस क्या बता रही है, सीधे हाथ से ही दोनों काम किए। ठीक है, कैसे किए, आपने पानी लिया, अभी भी आप सिंक है या टैप वाटर है जिससे भी पानी लेते हैं, इट्स ओके। ये जो आज भी हमारे यहाँ एक रिजिडिटी और शिद्दत है ना कि जी वजू करना है तो आपने मिट्टी का ही लोटा लेना है और बैठ के ही करना है और किबला रुख मुंह करना है, ये हर जगह नहीं चल सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख रहे हैं, वो कभी किसी चीज से वजू कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं। तो अब आज वक्त के साथ बदलते तरीकों से अगर आप अपने नए प्लास्टिक के लोटे यूज करते हैं या स्टील की टैब्स हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उम्मत के अंदर जब जवाल आता है तो असल रूह को छोड़कर लोग इन चीजों को इतना बड़ा बनाते हैं कि इसी में झगड़ झगड़ के फिरके बन जाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के नबी क्या करते थे, दाएं हाथ में पानी लिया, अब आप क्या करेंगे, इस पे पानी लेंगे। ठीक है, अब ये चुल्लू आपका पानी का भर गया, आप क्या करेंगे, इसको मुंह में डालेंगे, गुली करेंगे, थोड़ा सा पानी पीछे रह जाएगा, उसको साथ ही आप नाक में यूं डाल दें। ये 1 दफ़ा क्लियर हो गया, दोबारा फिर जब हाथ पानी में जाएगा तो साफ पानी लेंगे ना, फिर पानी लिया, फिर एक कुली की और बाकी जो पानी है वो नाक में डाल दिया। ये यहां मुराद है। फिर दोबारा पढ़े इस शौर के साथ कि सुम्मा अदखला यमीनहु फिली नाई, फिर आपने दाएं हाथ को पानी में डाला, फमद मदा, फिर कुली की मद मदा, एक मद मदा से वो कुली की एक खास आवाज आती है ना, बिल्कुल मुझे उसकी साउंड आती है, मद मदा, कि जैसे पानी मुंह में डाल के फिर उसको थोड़ा सा मुंह में फिरा के फेंक देना। फिर बस तनशका, फिर उसके बाद आपने नाक में पानी डाला, कौन सा पानी डाला, जो बचा हुआ था उसी में से बचा हुआ था, फिर जब नाक में पानी डाल दिया तो बस तन सारा, फिर उसको झाड़ दिया, नाक के अंदर जो पानी वो झाड़ने का अमल किससे, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सुम्मा गसल वजहहु, फिर उसके बाद दोनों तरफ से मुंह धोना है। मुंह कहां तक होता है, जहां तक हमारा स्कार्फ से मुंह दिखता है वो मुंह होता है, नहीं, पूरा मुंह, ये पूरा, ये चिन से लेके ये पूरा मुंह है, इस पूरे को आपने धो दिया। ठीक है, अब यहां कितनी दफा धोने की बात है, 3 दफा। फिर यदई हिलल मिर्फकें, कोहनियों तक, कुरान में भी जिक्र आता है लेकिन पूरा वजू का तरीका कुरान पाक में नहीं है। मिर्फक कहते हैं इसको, कोहनी को, राफा काफ, रफक का कहते हैं नरमी, दोस्त, रफीक। ठीक है, तो मिराफिक असल में ये वो जगह जिस पे आराम किया जाए, कभी थक जाए तो हम कोहनियां नहीं टिका के बैठ जाते, तो इस वजह से इसको मिर्फक कहते हैं। तो अच्छा, यदई ही इलल मिर्फक, अब लफ्ज इला को गौर से देखिएगा, बाज लोग जब सिंक के अंदर बाजू रखते हैं ना, तो मैंने देखा कि वो यूं कोनी पहले डाल के ना इधर से डाल के इधर करते हैं, इला किधर है, हाथ से इधर। तो सुन्नत तरीका फिर क्या होगा, अगर हम इतनी बारीकी में जाए, ये कोई फर्ज बातें नहीं है, लेकिन लफ्जों के ऊपर जब गौर करते हैं तो इलल मिर्फकीन से मजे कि हाथ से पानी डालना शुरू करें और इधर से गिरे, इला मैंने टूवर्ड्स, तरफ, ठीक है। अगर हम पहले कोहनी धोते हैं तो वो फिर इला यदैन हो जाता है। अब ये आप 3 दफ़ा धो लीजिए, फिर सुमा मसह भी रासी ही, फिर सर का मसा किया। अब आप देखिए कि इस हदीस में लफ्ज़ क्या है, रासी ही, और आखिर में अब क्या पढ़ें कि जिसने मेरे इस तरीके से वजू किया उसके पिछले गुना माफ़ होते हैं। सर के मसे की बात है, गर्दन के मसे की बात नहीं है। अब ये तो सिर्फ इतनी सी चीज़ है ना, आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो अब और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो मसे का मसनून तरीका है वो क्या है। बाकी चीज़ें तो हमें आती है ना, जैसे शुरू में मैं इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि ज़िंदगी का नहीं पता, तो वजू करने का थोड़ा सा तरीका देख लीजिए कि ऑफ कोर्स पहले, अभी सिर्फ बेसिक्स को देख रहे हैं, इसमें वो नहीं है चीज़ें कि जो सुन्नतें हैं और उसका खूबसूरत तरीका है। आम तरीका ये है कि ज़ाहिर है कि आपके दिल में नीयत है कि मैं वजू कर रही हूँ। 2 फ़राइज़ हैं, अगर आप देखें 2 फ़राइज़ हैं, एक तो ये है कि दिल की नीयत है, दिल की नीयत के बगैर आप शावर भी लेके निकल आएंगे तो आपका वजू नहीं होगा, गुसल कहाँ होगा। जनाबत का गुसल भी उसकी भी नीयत होती है। आपको पता है किस वक्त जब मैं मुंह पे पानी डाल रही हूँ, ये मैं मुंह धो रही हूँ नहीं हूँ, या मैं वजू कर रही हूँ, ठीक है। तो वजू करने के लिए दिल में नीयत है। उसके बाद सबसे पहले आपने दोनों हाथ धोने, ऑफकोर्स बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वो सुन्नत की चीज़ें वो आगे आएंगी, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ फ़राइज़ की बात कर रहे हैं। हाथ धो लिए दोनों अच्छी तरह से, अगर कोई चीज़ है हाथों में फंसी हुई है इस तरह से, जैसे ये खिलाल करना कहते हैं, क्लियर कर लीजिए। और उसके बाद कोशिश करें कि इस दौरान पानी ना ज़्यादा बहे, कि आप खेलते रहें और पानी बहता रहे, ऐसा ना करें। उसके बाद सीधे हाथ में पानी लें, मुंह में डाला, नाक में डाल दिया, इस तंशरा, ये जो हमने पढ़ लिया है 3 दफ़ा कर लें, दैट्स गुड, 1 दफ़ा 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद पानी लें, इस तरह चुल्लू भर के लेते थे, और उसके बाद उसको मुंह पे डालना, और कोशिश करें कि हाथ से कुछ इस जगह खुश्क ना रह जाए। 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी है। उसके बाद क्या है, हाथ धोने, पानी में हाथ डाल के इसको करके, तो आप यहाँ कोहनी तक केयरफुल रहे। हदीस में आता है वैलुल लिल आकाब, यानी तबाही है, वहील है, खराबी है उन एड़ियों के लिए जो खुश्क रहती हैं। ये जो कोहनी है और पाँव की एड़ियाँ अक्सर खुश्क रह जाती हैं, खुश्की की वजह से, सर्दी की वजह से, या बाज़ दफ़ा हाथ नहीं जाता, बाज़ दफ़ा शर्ट्स इतनी टाइट पहनी हुई है, वो भी एक मसला होता है। लोग फिर पूछते हैं अच्छा इसके ऊपर भी हम मसा कर लें, कोई कहता है स्काफ के ऊपर मसा कर लें, हैं तो ऐसी कोई चीज़ हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कहीं इसमें शायद हदीस आ जाए कि एक मौके पर अल्लाह के नबी की कमीज़ तंग थी या साबी की, तो आपने उसको उधड़वाया, खुलवा के फिर वजू कराया, ठीक है। तो अगर आपकी कमीज़ टाइट है तो पहले उस बंदे को डांटे जिसने आपको इतनी टाइट कमीज़ सिलवा के भेजी, ठीक है, आपका अपना खून भी रुक सकता है। दूसरी बात है, अगर आपको शौक के करने का, फिर बाथरूम में जाएं, कमीज पूरी उतार के वजू करके फिर दोबारा पहन लें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसके ऊपर कर लें। अब इसके बाद क्या किया, मसा। मसा करने का तरीका देखिए, आप सोचे कि ये पानी है, पानी में हाथ डाल के ना ऐसे झाड़ दें। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, ये सिर्फ एक फीलिंग्स के साथ होता है, पानी में हाथ झाड़े। उसके बाद आप अपने हाथों को यूँ देखिएगा, इस तरह करके इधर ये गुद्दी जहाँ अमूमन चुटिया बंदी देती है ना, यहाँ तक आप अपने बालों को यूं लेके जाएंगी। और ये मैं तो अभी स्काफ के ऊपर से कर रही हूँ ना, ये स्काफ के बगैर करना है। स्काफ में चाहे अपने 10 बिन्ने लगाई हैं और उसके नीचे आपने अंदर पता नहीं क्या कुछ बांधा हुआ है, उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। पूरा करके फिर वापिस आएंगे। अब ये जो वापिस आना है ना, ये क्या आपको बना देगा, हेयर स्टाइल खराब हो गई, तो अल्लाह को उस चल्ली पे बहुत प्यार आएगा जो अल्लाह के लिए हो रही है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ सिर्फ बात है मसह भी रासी ही, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाकी इसमें और भी रिवायत आएंगी, तो उसमें इसके साथ ही कानों का मसा, अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये एक हिस्सा हुआ। अब मसे का दूसरा हिस्सा क्या, दोबारा आपके हाथ पानी में जाएंगे, ठीक है, फिर उसमें जाके फिर झाड़ दें। उसके बाद ये शहादत की उंगली और ये अंगूठा, अब इसको देखिए, ये कान है, ये अंगूठा जो इसको पीछे रखेंगे, इसको इसमें जहां तक भी जा सके जाके इस तरह ये देखिए। अब मैं अलग अलग कर रही हूँ, ये दोनों साथ भी हो जाते हैं। जब इसमें करने के बाद आप यूं करेंगे, यूं यहां तक लाइए, ये कान की पोर जहां अमूमन आप टॉप्स पहनते हैं, और ये अंगूठा जो है ना इसको पीछे से आगे लाएं, यानी उसको पीछे से आगे लाना है और इसको अंदर, दोनों साथ भी कर सकते हैं इस तरह, और दोनों हाथों में साथ हो जाएगा। ये है कान का मसा, ठीक है। मेरा अल्लाह के बात वाजे। गर्दन का मसा जो है आप खुद ही पढ़ लेंगे, अभी मेरे कहने की जरूरत नहीं, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर। अब आप देखिए कि ये चीज यहां तक मसा हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने पाँव धोने हैं। पाँव कहाँ तक धोए, सुम गसल रिजलई की सलास मरत नीलल काबैन, फिर आपने दोनों पाँव, रिजल रिजलईन था असल में, नून गिर गया, हा लग गई, दोनों पाँव। अब ये देखिए रिजल है, रा की जेर है, तो रा के जबर के साथ रिजाल या रजुल कर दें, जीम पे पेश कर दें तो मर्द है। एक ऐसी हल्की सी तशबीह बता रही हूँ कि हमारे यहाँ बाज जाहिल लोग कहते हैं कि औरत पाँव की जूती है, ठीक है, अरबी जुबान में ना औरत पाँव की जूती है ना मर्द पाँव की जूती है, लेकिन पाँव और मर्द का एक ही रूट है अरबी में, वो रजुल ये रिजल है, सिर्फ रा की जेर और जीम की पेश से पाऊं और मर्द का लफ्ज बदल रहा है। तो हम मर्दों को भी नहीं ऐसा कह रहे, लेकिन सिर्फ आपको एक नुकता बता रही हूं कि छोटा सा लफ्ज जब आप इधर से उधर कर देते हैं ना, तो उसके साथ मानी बदल जाते हैं। फिर उसके बाद पाँव कैसे धोने, वही बात है कि जब पाँव आप धोएंगे तो पूरे पाँव को अच्छी तरह करके, पाँव की उंगलियां भी और पीछे खास तौर पे जो एड़ियां होती हैं उसके ऊपर एक दफा ऐसे हाथ फेर लें। मेक श्योर ये करना है कि पानी वहां तक चला गया। उसके बाद फिर आपने ये बात कही कि जिसने ऐसा किया। अच्छा, सबसे मुश्किल चीज जिसमें पता क्या इस हदीस में नोट करें जरा, ला युहद्दिसु फीही मा नफ्सहु, ना बातें करे उसमें अपने नफ्स से। सिर्फ दो नफिल अगर आप इस तरह पढ़ने की नियत कर लेना कि जिसमें आपने खुद से बातें नहीं करनी, और खुद से बातें क्या होती हैं ये भी बता देती हूँ। अब यहाँ से उठ के जाना किधर है, आज क्या पकाना है, इस वीकेंड पे किधर दावत है, वो शॉपिंग पे जाना है, पता नहीं वो जूता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा वो पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, ये नफ्स की बातें। इंसान को पसीने आने लगते हैं अगर इंसान किसी दो नफिल में शऊर के साथ खुद से बातें ना करें। एक सेकंड के लिए आप अपने आप को ढीला छोड़ेंगे ना, तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरह पढ़ लें तो उसके पिछले गुना जो है वो माफ हो जाएंगे। आप देखिए कि इतना छोटा सा अमल है, लेकिन इस पर इतनी बड़ी खूबी क्यों है, क्योंकि ये अमल छोटा नहीं है। मैं आपको भी एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ, कोशिश करके देखते हैं हम लोग कि क्या वाकई कोई ऐसी नमाज मैं पढ़ सकती हूँ, क्या मैं ऐसी नमाज पढ़ सकती हूँ कि जिसमें मैं अपने से बातें ना करूँ, पूरी नमाज मेरी तवज्जो हो। एक ब्रदर किसी न्यू मुस्लिम के साथ सफर में थे, तो रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो वो मस्जिद में कहीं रुक गए नमाज के लिए। कहते हैं कि मैं तो जल्दी से दो रकत पढ़ के आ गया, सफर थी कसर थी, नमाज पढ़ के आ गया। मैं उनका इंतजार करने लगा, 45 मिनट लग गए, मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं बाहर खड़ा हूँ, इसको पता भी नहीं। खैर जब उसके बाद आए तो वो बड़े शर्मिंदा और परेशान थे, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको इतनी देर खड़ा रखा। तो असल में मसला ये है कि तुम सब तो पैदाइशी मुसलमान हो, तुम्हें तो फौरन अल्लाह का तसव्वुर आ जाता होगा, मुझे तो आधा घंटा सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर करने में लग जाते हैं नमाज में खड़े होने से पहले। तो तुम मुझे बताओ कि तुम वो तरीका सिखाओ कि जिससे तुम लोग फौरन अल्लाह का तसव्वुर करके नमाज पढ़ाते हो। तो कहते हैं कि मेरे दामन में फिर उस वक्त शर्मिंदगी के सिवा कुछ और नहीं था। हमने कब कौन सी नमाज पढ़ी कि अल्लाह के सामने खड़ा होने का एहसास था। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। तो हम सब सोचें कि हम वाकई अल्लाह ताला के सामने खड़े होने वाली नमाजें पढ़ते हैं, या वो नमाजें हैं कि जिसमें अगली पिछली बातें हमारे दिल में आती हैं। तो ये थी आज की अहादीस। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।